مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے دورہ امریکہ کے حوالے سے عمران خان کے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی، اور اس بارے میں جو بحث ہوئی اور جو ہو رہی ہے اور جو مجھے یقین ہے کہ کافی عرصے تک جاری رہے گی۔ تو اس میں ہم نے بات چیت کے لیے دعوت دی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سیاسی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک انسانی پہلو ہے بہت گہرا، اور پھر یہ کہ یہ اخبارات میں اس پہ ہمیشہ لکھا جاتا رہا ہے، ڈاکومنٹریز بنی ہیں، بہت کچھ فلمیں بنی ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہم نے مختلف شعبوں سے لوگوں کو دعوت دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو دو لوگ موجود ہیں، اس میں پہلے ہمارے مہمان ہیں ایم ایم انصاری صاحب، جن کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، وہ مختلف اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور اس کے بعد انہیں کشمیر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی، جو انہوں نے بڑی تفصیل سے نبھائی۔ انہوں نے کچھ سفارشات گورنمنٹ کو پیش کیں، کچھ لوگوں سے باتیں کی جو کشمیر میں مختلف گروپس ہیں۔ تو انصاری صاحب ان کی تفصیل ہمیں بھی بتائیں گے۔ ان کے علاوہ وجے سونکر شاستری صاحب ہیں، جو کہ اسپوکس پرسن ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، ایک سیاستدان ہیں وہ، اور ان سے کیونکہ یہ جب بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو انہوں نے حوالہ دیا نریندر مودی صاحب کا۔ تو شروع ہم ان دونوں ہزار سے کریں گے۔ سب سے پہلے بلکہ میں آپ سے شاستری صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ گو کہ تردید آ گئی ہے آپ کے اسپوکس پرسن کی جانب سے فوری طور پر بی جے پی کے، لیکن یہ کہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بات ہی نہیں ہوئی ہوگی اور ٹرمپ صاحب نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ میں بات نہیں ہوئی، یعنی ثالثی کے بارے میں جس جو ٹرمپ صاحب نے عمران خان کو بتایا؟
دیکھیے، اس بات پر تو بالکل ہم لوگوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ باتوں میں اگر کوئی دم ہوتا، کوئی سچائی ہوتی، تو سرکار کی طرف سے ہمارے فورن سیکرٹری آ کر کے پارلیمنٹ میں ہمارے یہ بات نہیں کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں کیا گیا تھا ان سے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب جب ہمارے فورن سیکرٹری نے یہ بات کہہ دیا، تو اب یہ بات صحیح ہے غلط، اس پر تو کوئی بحث بھی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ ٹرمپ جی کے بارے میں تو یہ بھی آپ ہی کے یہاں سے نے جو ایک خبر چھاپی ہے اس کو دیکھ کر کے بھی آتی ہے اور آشچر بھی ہوتا ہے کہ کوئی 8100
شاستری جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑا سا، اگر فون کا آپ نے رخا بدلیے گا۔
نہیں بالکل صحیح ڈھنگ سے اس کو،
جی اب بالکل ٹھیک، اب ٹھیک ہے دوبارہ جی۔
اور واشنگٹن کہ ایک دو سال میں 8158 ٹائمز انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی پر ڈے کا اگر دیکھا جائے تو پر ڈے وہ 70 ٹائم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے ویکتی کے اوپر اتنا بھروسہ کرنا، جبکہ یہ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے ہمارے کی طرف سے، ہمارے نمائندوں کی طرف سے، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس بات کو یہیں سماپت ہونا مانا جانا چاہیے۔ یہ الگ کی بات ہے کہ ٹرمپ جیسے لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، جب اس کو ان کے ہی دیش میں نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے، تو ہمارے یہاں بھی اس کو زیادہ نوٹس لینے کی
آوشکتا نہیں۔ شاستری جی، یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں اور ان کی بے شمار باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ نے بات کہی، ہو سکتا ہے آپ نے کسی جگہ یہ پڑھی ہو، لیکن بہرحال ان کے سٹیٹمنٹس، ان کی ملاقاتیں اہم ہیں۔ خود نریندر مودی جب آئے تھے تو ان کے دورے کے حوالے سے جو کچھ گفتگو ہوئی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس کو شہ سرخیوں میں انڈیا میں چھاپا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کی اہمیت ہے اور ان کے فیصلوں کی اہمیت ہے، اور حالیہ دنوں میں تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ ان کا تنازع بھی ہے جو محصولات کے معاملے پر ہے اور تجارت کے معاملے پر، لیکن اس کو بھی انڈیا میں سرخیوں میں جگہ دی جاتی رہی۔ تو ایک कंट्रोवर्सी होने के बावजूद ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं उसको ये कहा गया हो कि वो उसके कोई माने नहीं है। एक सदर जब कोई बात कहता है तो उसके माने तो होते हैं, लेकिन हम इसी बात को आगे करेंगे क्योंकि जो आपने बात कही कि इस बहस इस पे नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ और मैं अंसारी साहब से पहले तो वही सवाल पूछूंगी जो मैंने आपसे पूछा। अंसारी साहब, आप कुछ हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये बात किस तरह हुई होगी।
देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ इस पूरे मामले को, एक तो हमारे भारत में ये हुकूमत ने इस बात को से इनकार किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरह की कोई बात डोनाल्ड ट्रंप साहब से कही है कि मीडिएट करें, लेकिन मैं अपनी जाती राय रखना चाहूँगा आपके सामने, और वो ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे गए और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उन्होंने टेररिज्म की बात ना की हो और जहां पे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की बात ना की हो और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जाम न लगाए हों, जो बहुत ही सही भी हैं अभी हाल में जो पुलवामा या बालकोट में हुआ। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब जहां कहीं भी गए और टेररिज्म की बातें कहीं, तो उसमें अगर सदर ट्रंप से भी उन्होंने अगर कोई इस तरह की बात कही है कि वो मदद करें कि हिंदुस्तान में जो टेररिज्म से जो रिलेटेड बातें हो रही हैं या जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कम करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये पुलवामा और बालकोट में जब मामले हुए तो दुनिया के कई ममालिक ने इस बात को एतराफ किया, बल्कि खास करके सदर ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे के अंदर एक आपको खुशखबरी आएगी, और उसमें अभिनंदन जो कि वहां गिरफ्तार हो गए थे हमारे पायलट, वो उनको फौरन इमरान खान ने छोड़ दिया। तो मेरा पहली बात तो ये कहना है कि जहां कहीं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं टेररिज्म की बात कही है, और ये हो ही नहीं सकता कि जब इतने असरदार प्रेसिडेंट के साथ मिल रहे हों, ट्रंप साहब के साथ मिल रहे हैं जिसको वो जिनको ये बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, वो उनसे बात न की होगी। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सदर ट्रंप जो है इतने असरदार मुल्क के और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के मालिक हैं, और वो इतनी हल्की बात क्यों कहेंगे कि मोदी साहब ने इस तरह की कोई बात कही होगी। तो मैं नहीं समझता कि सदर जो है ट्रंप जो है इस मामले में किसी तरह से झूठ बोल रहे हों, और हमने उस वीडियो को बार बार यहाँ देखा है, बार बार यहाँ पे सुना है, और उससे देख करके हमें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ बोल करके उनको फायदा क्या होगा। उन्होंने जिस तरह से जिस लबो लहजे से उन्होंने बात कही कि दो हफ्ता पहले बात हुई, ओसाका में बात हुई, और पूरी बात की सिक्वेंस जो बताई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में भी चाहे पॉलिटिकल हलके में कोई भी बात हो रही हो, लेकिन जो कश्मीर के मामले के जो जानकार लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, सब जो है पर्सनल लेवल पे कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूर ये बात की है ट्रंप साहब से। दूसरी बात जो तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, और वो ये कि पिछले 70 सालों में देखा गया कि 4 जंगें लड़ी गई हैं, और तब से आज तक स्किर्मिशेस होती रही हैं एलओसी पे, और इंसर्जेंसी हुई है और मिलिटेंसी भी हुई है तमाम तरह की, और 7 लाख जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे जमा है। जाहिर है वो चाइना से वार तो नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ कश्मीर में जो एलिनेशन है और वहाँ को जो नौजवानों का जो गम गुस्सा है, जो अपराइजिंग है, उससे वो डील करने के लिए वहाँ पे हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एहसास है कि आखिर 70 सालों में हमने जंग से क्या पाया, हमने मस्कुलर और ब्रूटल अप्रोच से क्या पाया, वहाँ पे 12 ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आ रही हैं कि वहाँ पे बहुत काफी बर्बादी हुई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। तो अगर इन पसमंजर में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर कोई मदद चाही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बुरी बात है। और बायलेटरल बातों की जहाँ तक सवाल है, ये भी सही है कि 70 सालों में बहुत दफा बातें हुई हैं और बड़े लेवल पे बात हुई है, लाहौर डिक्लेरेशन का जिक्र आता है।
मैं यही कहने वाली थी अंसारी साहब के सबसे ज्यादा जो एक
मुख्तसर में बात कहना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस बात से वाकिफ हैं कि ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला है, उसको वो हल करना चाहते हैं, और उस हल करने में अगर किसी भी बासर किसी लीडर की मदद चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं समझता हूँ
क्योंकि दुनिया के बेशतर तनाजात जो हैं वो एक तीसरे फरीक की मदद से ही हल हुए हैं। बहुत सारी चीजों में पेशरफ्त उसी वक्त होती है जब दो लोगों के बीच में सालिसी के
65 में इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद रशिया ने मीडिएट किया था, और मीडिएशन के वजह से ही ये तय पाया था कि जो LOC की जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन करते हुए इंडिया अपनी जगह पे आ जाए, पाकिस्तान अपनी जगह पे पहुंच जाए, जबकि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की टेरिटरी में को हासिल कर लिया था। तो मीडिएशन पहले भी हुआ है। दूसरा ये कि
मैं यहाँ पे अंसारी साहब, इससे पहले कि हम इस बात में आगे जाएं, मैं हमारे दो मेहमान और हमारे साथ हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। संजय
टिप्पणी करना चाहता हूँ
जी। हेलो,
अभी हमारे जो पैनलिस्ट ने जो बातें कही है मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ।
अच्छा,
बहुत सारी बातों ने कहा है पर उन्होंने एक बात छोड़ दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो आज जो संबंध है, जो खराब संबंध है, इसका कारण क्या है और क्यों ये बात रुकी हुई है, ये और लोग बाकी लोग सुनने वाले श्रोता भी हमारे क्लियर होते, क्योंकि इसलिए ये वार्ता रुकी है कि एक तरफ तो शांति की बात की जाती है और बात करने के लिए बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टेररिज्म को बंदूकें और गोलियां भी चलती रहती हैं, लाशें भी गिरती रहती हैं, तो टेरर एंड टॉक एक साथ कैसे हो सकता है? ये हमारे देश का पॉलिसी बना है, खासतौर से पाकिस्तान के संदर्भ में, और ये पॉलिसी आज नहीं बनी है, ये 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, तो उस समय ये तय किया गया था। अब ये जब पॉलिसी लगातार चल रही है तो ऐसे में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये आवश्यकता ही नहीं है इस बात के लिए, और वो भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आज देश का भरोसा उनके ऊपर है, आज पूरे पूरे देश के लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और जो भी वो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट हम इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के संबंध में किया है, हमारी इकोनॉमी के संदर्भ में किया है, हमारे यहाँ जो और हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की दिशा में जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो सब उन्होंने पूरा किया। ऐसे में जो पॉलिसी एक हमारी बनी है, हमारे देश की बनी है कि टेरर एंड टॉक दोनों एक साथ नहीं होगा, पाकिस्तान अगर टेरर बंद करे, टेररिस्टों को भारत में भेजना,
लेकिन मैं शास्त्री जी आपको एक बात याद दिलाऊंगी
कि हम तो टॉक करने के लिए तैयार है,
उनके दौरे
तीसरे पक्ष की आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगी आपको कि इस दौरे से पहले शास्त्री जी, वही बात जो आपने कही, मैं वही बात आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इस दौरे से पहले हाफिज सईद को जब गिरफ्तार किया गया था तो ये बात सामने आई थी कि ये अमेरिका की तरफ से मुतालबा था, और जाहिर है कि भारत का ये मुतालबा था। तो इसका मतलब ये है कि सालिसी में जो आपने बात की तकरीबन वही बात ये है कि पाकिस्तान का एफर्ट वो था जो भारत ने मांगा कि हाफिज सईद को गिरफ्तार किया जाए, और दहशत गर्दी की जहां तक बात है उसको तो कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत
कर सकता है। मैडम आप ये तो कह रही है ना, लेकिन पाकिस्तान में तो इसकी फैक्ट्री चल रही है, पाकिस्तान की सेना इसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो इसको सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान में जो भी सियासत में वहाँ प्रधान बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो बेगर सेना के और बेगर इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं बनता है। ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ये दुनिया के सामने, दुनिया की आंखों में नहीं झोंक सकता धूल पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो एडवोकेट लोग हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि
तो मैं अपने दो और मेहमानों का तारुफ करा दूं।
करना होगा तभी टॉक हो सकती है।
मैं
इसी के हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसी बात करी ही नहीं,
यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सालिसी को नहीं कहा होगा। शास्त्री जी हमारे साथ दो मेहमान और हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर इरशाद महमूद साहब हैं जिनका ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से है पाकिस्तान के, और कश्मीर के उमूर पे ये काम करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो एक बहुत ही मारूफ फिल्म मेकर हैं, इन्होंने कश्मीर पे कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और इसके अलावा बहुत से मौजूदात पर जैसे पंजाब में जब हंगामे हुए थे उन्होंने उस वक्त भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पंजाब की सूरत हाल पर, और भी बहुत से मौजूदात हैं। संजय काक साहब, तो मैं आप दोनों को भी खुश आमदीद कहती हूँ। आपने अब तक की गुफ्तगु सुनी होगी क्योंकि अभी तक बात की दोनों हमारे जो मेहमान हैं इंडिया से उन्होंने, तो मैं पाकिस्तान से जो हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशाद महमूद, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप कुछ बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो बात हुई है क्या ट्रम्प साहब ने जो बात कही कि इंडिया ने सालिसी की दरख्वास्त की है, तो ये किस हद तक अब संजीदा शक्ल इख्तियार करेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि बात तो हुई है लेकिन शायद इस पर आइंदा पेशरफ ना हो सके, लेकिन आप क्या समझते हैं?
देखिए, मैं ट्रंप की सदर ट्रंप की तरफ से ये कहना एक बहुत ही बड़ी बात है
जी।
और इसके नतीजे में कश्मीर के हवाले से जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डेफनिंग साइलेंस थी वो तो टूट गई। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दो दिनों से पूरी दुनिया के प्रेस में और मगरब के प्रेस में और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के प्रेस में कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। ये बातचीत क्या सिमत अख्तियार करेगी ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इट सेल्फ जो है वो एक जो डेडलॉक था वो तो टूटा है कि कन्वर्सेशन इसके ऊपर शुरू हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी इस बात का बार बार इजहार किया। एक दफा इस दफा आई, फिर पिछले साल भी आई थी, वो भी उसने भी ये सजेस्ट किया कि भाई आप कश्मीर का कोई पोलिटिकल सोल्यूशन निकालें, वहां बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। और फिर उन्होंने ताकि ये भी कहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल का इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में इंक्वायरी करे। तो एक ऐसी सिचुएशन है जो इंटरनेशनल मीडिया में पहले से मौजूद थी। 6 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम ने एक बहुत बड़ी स्टोरी टॉर्चर के ऊपर छापी जो कश्मीर में हो रहा है। तो ये एक ट्रंप की तरफ से कहना और फिर इमरान खान साहब का वहां यूएस में बार बार इस बात का इजहार करना, पाकिस्तान में एक माहौल बदला है जब से इमरान खान हुकूमत में आए, या कोई किसी किस्म के ग्रुप्स को सपोर्ट करने की बात नहीं करता, कोई जो है किसी जंग और जदल की बात नहीं करता, हर तरफ एक ही मौजू है कि हमने पीसफुल तरीके से न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट करना है उस मसले को हल निकलवाना है बल्कि हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन करानी है। और उसके लिए पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा तालमेल मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये मौका हिंदुस्तान के लिए भी है और इस खित्ते के लिए भी कि ये एक ऐसा मसला जो 70 साल से दोनों मुल्कों में जिसमें उलझे हुए हैं और उसके हल की तरफ कोई कदम
और सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीरी आवाम के
लिए हौसला मिला है लोगों को
जी। और जैसे कि आपने कहा कि जब उनसे शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि कश्मीर के मसले के हल के बारे में माजी में भी कई अमरीकी सुदूर ताउन की पेशकश के साथ इसके हल पर उन्होंने जोर दिया, तो उन्होंने कहा कि एक अरसे से तो कश्मीर का नाम तक नहीं लिया जाता था और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस मामले में दोबारा जाना आएगा। वही बात जो भी आप डॉक्टर इरशाद महमूद कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि उन्होंने आज तक किसी अमरीकी सदर से मसले कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इतना बरमला इजहार नहीं सुना था। मैं अब आपकी तरफ आती हूँ संजय काक साहब। इसमें एक चीज़ जो अक्सर हम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है उसकी सूरत हाल क्या है। आप एक फिल्म मेकर के हैसियत से अंदर तक गए हैं जैसे कि अंसारी साहब, और बल्कि आप तीनों ही इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और आप वहाँ जा गए होंगे और देखा होगा, तो मैं आपसे कहूँगी पूछूँगी कि कश्मीरी अवाम क्या चाहते हैं? ये सालिसी जो है आप समझते हैं कि ये एक जान आई है उससे उनकी इस ख्वाहिश में कि कश्मीर के मसले का कोई हल किया जाए चाहे वो खुद मुख्तार एक रियासत की हैसियत से?
जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जो मसला है इसका जो इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से इसको इसको डिस्क्राइब करती है इस पे थोड़ा हमें गौर करना होगा, क्योंकि कश्मीरियों के साथ या इंडिया के बॉर्डर के अंदर तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये तो कोई मसला है ही नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ जब बात उठती है तो कहते हैं कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, ये इंटरनल मैटर है, तो आप इसमें दखलंदाजी ना दें। जब कहीं इंटरनेशनल फोरम में बात उठती है तो वो कहते हैं कि ये तो इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई एक कंसिस्टेंट पोजिशन नहीं रही है इसमें कि ये मसला है क्या। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो ट्रंप का जो स्टेटमेंट है सही है, गलत है, सच है, झूठ है, इस पर हम ना जाएं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत देर के बाद इस जो मसले के ऊपर एक ढक्कन सा पड़ा हुआ था वो उठा है। और मैं हाल में श्रीनगर में ही हूँ और मैं ये इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि लोग एक तरह से एक बहुत बड़ी सांस उन्होंने ली है कि चलिए कोई बात तो हो रही है, क्योंकि ये तो सबकी जानकारी होगी कि खासकर देखिए ये मसला 30 साल पुराना है और यहाँ पे लोगों के ऊपर जो दबाव है, अभी अंसारी साहब ने भी जो कहा कि 500,000 से लेकर 700,000 सिपाही हैं इस एरिया में, तो लोगों के ऊपर जो दबाव है उसमें कोई मतलब राहत नहीं मिल रही थी लोगों को, और खासकर पिछले 1.5-2 साल में तो बहुत ही ज्यादा लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये मैं जो प्रेशर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर मिलिटेंट्स के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग जो सड़कों पर चलते हैं उन पे जो पाबंदियां हैं उससे जो प्रेशर है, लेकिन हाल में आप ये मानिए कि कम से कम 3,000 के करीब जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी तफ्तीश की जा रही है, उनको क्वेश्चनिंग हो रही है, तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त कि प्रेशर जो है वो इतने एक इनटॉलरेबल लेवल पर पहुंचा हुआ है कि जो भी कोई इस इशू को समझता है परखता है वो ये कहेंगे कि ये मामला एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच रहा था जो कि कभी फटने की उम्मीद आ रही थी। और उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये जो बात जो उठी है वो उठी क्यों है, कैसे हम उस पर ना जाएं, लेकिन हम ये जरूर एक्नॉलेज करें कि प्रेशर में एक बहुत जरूरी राहत मिली है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए इंडियन स्टेट की जो कश्मीर की तरफ पॉलिसी रही है उसमें हम बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखेंगे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जो पहले की सरकारें थी जिनको आप मान लीजिए हम कहेंगे कि वो कांग्रेस की कंट्रोल सरकारें थी, वो कश्मीर को एक तरीके से एक प्रॉब्लम देखती थी और उस प्रॉब्लम को उनको कंट्रोल करना था, उसको रिजॉल्व करने का उनकी भी मतलब कोई उनने भी कभी कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उनकी जो पॉलिटिक्स है और जिस तरह वो इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए कश्मीर एक प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कश्मीर एक मौका है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। तो अभी जो ये आप हुहार सुन रहे हैं और आपके पैनलिस्ट की जो शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि हमारी तो पॉलिसी ही नहीं है बात करने की, क्योंकि डोमेस्टिकली तो आपने यही कहा है, अब डोमेस्टिकली अगर आप
हमारी पॉलिसी
इलेक्शन में आप इस बात को लेके तो फिर आप इंटरनेशनल फोरम अच्छा, में कैसे बोल सकते हैं।
मुश्ताक काकसा, मैं आपसे संजय काकसा आपसे कहूंगी कि मैं यहाँ पे आप सबसे बात करूंगी, लेकिन अभी अभी मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देख रही हूँ कि अमरीकी सदर के मुशीर से एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया कि क्या कि ये क्या ये गलत बात है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि अमरीका सालिसी का काम दे, ये सदर ट्रंप से दरख्वास्त नहीं की थी, तो उन्होंने इसको सरीहन जो मुशीर है उन्होंने इसकी तर्दीद की है, जो इंडियन हुकूमत का मौकफ़ है वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात कही थी कि सदर ट्रंप जो है इस मसले में सालिसी का किरदार अदा करें। मैं आपसे पूछूंगी शास्त्री जी कि चलिए हम इस बात को जाने देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस पर गवर्नमेंट के बहुत से मौकफ़ आएंगे, अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, अब ये दो गवर्नमेंट्स का मामला है, लेकिन अभी जो हमारी बात हुई इनसे साहब से मैं ये कहूंगी कि हालिया दिनों में बहरहाल बहुत सी इंसानी हकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियां हुई हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन ने भी बात की है, अकवाम मुत्तहदा ने भी बात की है, और अब अमेरिका ने सालिसी की पेशकश की है, तो आपको लगता है कि कश्मीर कोई ऐसा मसला है कि उसका हल होना चाहिए और उसमें अगर एक सालिस आ जाए, जो कि बुनियादी तौर पर हमें ये नजर आता है कि अमेरिका और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये तो एक ऐसा सालिस होगा जो भारत के साथ है, मतलब वो भारत के खिलाफ नहीं है।
नहीं देखिए कार्ड साहब ने एक बात कही
जी
कि आज जो मसला बिल्कुल थका हुआ था वो डक्कन
जी,
मैं इस बात को मानता हूँ कि ये ढक्कन खुल गया है ऐसा ये लोग मानते हैं, पर ये ढक्कन कब बंद था जरा ये तो बताएं, उसी कश्मीर में कितने अटैक होते थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितना फैला हुआ था और हजारों जाने जा रही थी और कश्मीर के माध्यम से लोग धीरे धीरे आकर के भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों में भी अटैक कर रहे थे, वहां पर भी दहशत गति हो रही थी, उस समय क्या दुनिया की नजर नहीं थी। आज जब भारत ने एक निजाम बदला है, यहाँ का गवर्नेंस बदली है और एक कश्मीर के संदर्भ में और खासतौर से जो सेपरेटिस्ट में है उनके संदर्भ में नई पॉलिसी जब तय हुई है, तो अब दुनिया को लग रहा है कि भारत में कुछ चिंताजनक बात हो रही है। आज भारत जब अपने मसले को स्वयं हल करने की स्थिति में हो गया है और जवाब दे रहा है, और ये आतंकी हैं उनको सीमा के अंदर जो भी आ रहे हैं उनकी उनकी लाशें दिख रही हैं, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात की जा रही है। तो वो दिन कहाँ थे जब उसी कश्मीर में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के तहत से होते थे, पाकिस्तान की फैक्ट करेंसी हमारे देश में आती थी, पाकिस्तान से तमाम ड्रग्स हमारे देश में आते थे और आतंकवादी उन फंड से आतंकवाद को वहां पर स्पॉन्सर किया जाता था। 1991 में वहां से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर कर दिया गया। कहां दुनिया सो रही थी? अब जब ये सब सारी चीजों से भारत निपटने लगा है और पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान आतंकवादियों को मारने लगा है, तो अब ये बातें लोगों के समझ में आ रही हैं कि अब ये मुद्दा दुनिया के स्तर पर है। हम तो चाहे हमने तो उठाया ही है दुनिया को, जब बालाकोट में हमने हमारे वायुसेना के लोगों ने अटैक किया था और वहां आतंकवादियों को 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा था, तो उसी समय हम भी समझ चुके थे कि अब ये दुनिया का मुद्दा बनेगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज यहाँ है कि ट्रंप से हम क्यों बोले, काहे तू ये बोले। हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट है कि हम दो पक्षी वार्ता में ही भरोसा रखते हैं, बायलेटरल टॉक ही हमारे यहाँ होगा, इसमें तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
तो
और हम अपने मस्जिद को स्वयं सुलझाने की स्थिति में है जब हम आ जाए हैं। तो हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जिनका, जैसे कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस मामले को उलझाया ही नहीं, बल्कि कश्मीर की समस्या तो कांग्रेस ने पैदा ही किया है। और कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती कि ये समस्या का समाधान हो। आज हम पाकिस्तान के लोग तो कम बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के पक्ष में या ट्रंप ने झूठ बोला या सही बोला, ये ज्यादातर तो हमारे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, जबकि उनको तो हमारे देश के पॉलिसी के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हमें भरोसा है अपने नेता पर, और जिस नेता के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो झूठ बोलते हैं और उनके झूठ बोलने का रिकॉर्ड है, तो ऐसे लोगों को सही बताने वाले कांग्रेस के लोग, ये हमें तो स्वयं अपने ही कांग्रेसी नेताओं के,
ठीक है। मैं यहाँ पे आप जी आपने अब हम क्योंकि हमें कई सवाल हैं इसमें, तो हम थोड़ा मुख्तसर रखें अगर सब लोग अपने जवाब। अंसारी साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। इन्होंने दो तीन बातें कही। एक तो इन्होंने ये कही कि जो हल नजर आया कश्मीर के मसले का, वो जब से मोदी जी की हुकूमत आई उसके बाद से कश्मीर के मसले का कोई हल नजर आता है। आपने 2012 में कश्मीर का बार बार दौरा किया, बहुत सी सिफारिशात पेश की, उन पर अमल भी हुआ। आपका क्या कहना है कि वो कौन सी हुकूमत है जिसके दौर में सिंसेरिटी के साथ काम शुरू हुआ कश्मीर के मसले को हल करने का?
अंसारी साहब, मुश्किल है ये कहना कि किसके दौर में वहाँ पे हालात नॉर्मल हुए, इसलिए कि वहाँ पे जो भी हुकूमत बनती है, चाहे वो एनसी की होती है या पीडीपी की होती है, तो जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो भी होती है कांग्रेस की चाहे एनडीए की, उनके साथ वो मिलकर के सरकार वो बनाते रहे हैं। तो दरअसल अगर कश्मीर के मामले में और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बात करें, तो उसमें सेंटर का काफी दखल रहा है। चाहे वो एनसी की सरकार रही है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर बनती, अलायंस में बनी है, पीडीपी की है तो भी, और ये एनसी पीडीपी दोनों पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर चुकी हैं और बीजेपी के साथ भी अलायंस कर चुकी हैं, और या तो वहाँ पे ज्यादातर प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल होता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसके दौर में वहाँ पे हालात अच्छे रहे। कोई भी सरकार वहाँ बनी है, कश्मीरियों की हालत बड़ी खराब हुई है, और इसमें संजय कायक साहब ने बड़ी तफसील से आपको बता दिया है कि वहाँ पे क्या हालात हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है, बहुत मैसिव उनको सपोर्ट मिली है, इसीलिए ज्यादा तवक्का भी है कि शायद मोदी
साहब जो है वो वहाँ के मसले को हल निकालेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मोदी साहब को ये भी एहसास है कि पिछले इतने 70 सालों में तमाम तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, मस्कुलर अप्रोच लगाया जा चुका है, वारें हो चुकी हैं, लेकिन मसले का कोई हल निकल नहीं पाया। और पिछले दिनों जो पुलवामा और बालाकोट में जो कुछ हुआ, लग रहा था कि दोनों न्यूक्लियर नेशन जो है वो एक वार की सिचुएशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से सऊदी यूएई ने और चाइना ने और सदर ट्रंप ने मुदाखलत की कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मुल्क जो है वार पे चले जाए। तो एक वार का जो ऑप्शन था शायद मोदी सरकार के लिए कि वो इससे फिर मसले को हल कर लेंगे, वो ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो चुका है। और अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ नेगोशिएशन का। और इस सिलसिले में जब हमारी किसी दोस्त से बात हो रही थी जो बीजेपी के सिंपथाइजर हैं, तो मैंने कहा कि आखिर मोदी साहब ने तो भाई दुनिया में इस तरह की बात करते हैं और ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जरूर उनसे बात की होगी, तो ये मना क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो भी पाकिस्तान से पिछले दिनों कुछ हुआ पुलवामा बालाकोट के हवाले से, और तमाम हिंदुस्तान ने और खासकर नौजवानों ने जो वोट किया है वो इनके बिखर जाते, इसलिए इनकी जरूरत पड़ गई कि ये फौरन ये इनकार करें। और जाहिर है कि ओपोजिशन ने भी इसको ये किया कि ओपोजिशन को बिना कंसल्ट किए हुए, बिना बात किए हुए कैसे इन्होंने जाकर के वहाँ पे बात कर दी। तो हमारे जो बहुत सारे नेशनल इश्यूज हैं, हमने देखा ये है कि कांग्रेस बीजेपी दे आर ऑन द सेम बोर्ड। जब कभी बड़े मसले हल होने होते हैं तो दोनों के अपने इंटरनल कंसल्टेशन होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि मोदी साहब ने जो भी कोई बात ट्रंप साहब से की है उसको बीजेपी से पहले कंसल्ट नहीं किया। मैं आपको इसलिए कहना ये चाहता हूँ कि जब 814 हाईजेक हुआ और उसमें कुछ मिलिटेंट्स को छोड़ना था और कुछ पैसे देने थे, और उस वक्त वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो उस वक्त कांग्रेस को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई हो हल्ला नहीं मचा, न तो पार्लियामेंट में न तो पार्लियामेंट के बाहर। इसमें क्या हुआ है कि मोदी साहब ने खुद उसकी क्रेडिट लेना चाहा और बात की, जिसकी वजह से शास्त्री जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेसियों ने उसको काफी एतराज किया। तो मैं इस बात को जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हमने तमाम जो कोशिशें की हैं उसमें सिर्फ वाहिद रास्ता रह गया है जो थर्ड पार्टी मेडिएशन का। और शिमला एग्रीमेंट में ये बात सही है और ये साफ कहा है, पहला पॉइंट यही है कि यूएन फ्रेमवर्क में होना चाहिए, यानी जो 48 का रेजोल्यूशन है उसका ध्यान रखा जाएगा। फिर दूसरी बात कही गई है कि ये बायलेटरल इशू है, दोनों मुल्क मिलकर करेंगे, और उसमें ये भी उसके आगे एड किया है कि या आर एनी अदर पीसफुल मीन, एनी अदर पीसफुल मीन्स के ऊपर बहुत काफी बहस हुई है, तो उसमें बात निकल कर आई है कि उसमें मेडिएशन ही बात की गई है और ये हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने ये बात को एक्सप्लोर किया है, और ये बदकिस्मती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे और कई अपोजिशन के मेंबर लोग हैं, उन्होंने इसका एतराज किया। और ये देखते हुए कि अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशंस, खास करके इकोनॉमिक और पोलिटिकल रिलेशंस खराब ना हो, इसलिए जल्दी से इसके ऊपर अलग अलग तरह के बयान आने लगे हैं कि भाई उन्होंने सही नहीं बोला, उन्होंने झूठ बोला।
अच्छा, तो अब हम प्राइम मिनिस्टर अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त आदिल नजम साहब हमारे साथ हैं, मारूफ तजियाकार हैं।
एक वर्ड मैं आपसे बता दूं कि अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से वजाहत नहीं आई है। जो भी कुछ बात हो रही है उनकी सरकार कह रही है, सरकार के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हम ये तवक्का करते हैं के मोदी साहब खुद जो बहुत ही पारदर्शिता के हामी हैं और वो करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये
बात करेंगे। मैंने पहले कही थी कि सोशल मीडिया पे ज्यादा चर्चा है, या अभी मैं जैसे बता रही थी कि ये जो अमरीकी सदर के मुशीर की बयान अभी ब्रेकिंग न्यूज में देख रही थी कि उनसे ये भी सहाफी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि नहीं, इन्हीं अल्फाज में मोदी साहब ने ये बात की थी ट्रंप साहब से। तो हमारे साथ आदिल नजम साहब हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ बॉस्टन से। आदिल हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, एमएम अंसारी साहब हैं जिनका बड़ा अहम रोल रहा है कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, इन्हें मुकर्र किया गया था, इन्होंने सिफारिशात पेश की, उन पर अमल भी हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे साथ परवेज बुखारिया भी शामिल होने वाले हैं, इरशाद महमूद साहब ارشاد محمود صاحب پاکستان سے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ سنجے کاک صاحب ہیں جو کہ فلم میکر ہیں. اب آپ مجھے بتائیے یہاں کے امور سے آپ سے زیادہ کون واقف ہے، تو کچھ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو ایشو کھڑا ہوا اس کے بارے میں؟
دیکھیے، جو ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی پریس کانفرنس کے درمیان، وہ یقیناً ایک سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹ تھی ہر ایک کے لیے. عمران خان کی بھی سرپرائز ہوئے، میڈیا بھی سرپرائز ہوا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ یقیناً. اب یہ بحث کہ یہ مودی صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا مودی صاحب کی بات کا. کوئی نہ کوئی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کشمیر پر بات ضرور ہوئی ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی ملاقاتوں میں کشمیر نہ آیا ہو، اور اس کو کتنا کچھ سمجھا ٹرمپ صاحب نے یا نہیں سمجھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میرے خیال میں ہم غلط چیز کے پیچھے لگ گئے. بحث یہ شروع ہو گئی کہ مودی صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا کس نے کہا. میرے خیال میں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ یار یہ آئیڈیا ویسے برا نہیں ہے، میڈیشن والا جو آئیڈیا ہے وہ برا نہیں ہے. اس فکر میں پاکستانی کی حیثیت سے نہیں، میں جنرل ایک مسئلہ، دنیا کے جو طویل ترین مسائل، مشکل مسائل ہیں، اس میں سب سے بڑا سب سے اہم مسئلوں میں سے ایک ہے کشمیر کا. 70 سال سے زیادہ ہو گیا، 70 سال پہلے جب یہ شروع ہوا تب بھی یہ طے تھا کہ یہ مسئلہ یہ دونوں ملک شاید آپس میں نہیں کر سکتے، تو شاید یونائٹیڈ نیشنز کی مدد کی ضرورت ہو. لیکن کم از کم ایک ملک جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز سے ٹکراتا رہا. چلو ٹھیک ہے، اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کاسٹ کر رہا ہے، انڈیا کو بھی کاسٹ کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو کشمیر کے اپنے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ مسئلے کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو اگر اس کا حل نکل آ جاتا ہے میڈیشن سے، یا نکلنے کی کوئی امکان بھی ہے، تو اچھی بات ہوئی نا. اچھا، ایک بار بہت مختصر بات کروں گا. ریاکشن اس طرح آیا ہے کہ جس طرح اگر میڈیشن ہوئی تو وہ پاکستان کے حق میں ہوگی اور بھارت کے خلاف ہوگی. میرے خیال میں ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے. اگر آپ سوچیں اس وقت امریکہ کے ایک کمرے میں مودی صاحب بیٹھے ہیں، عمران صاحب بیٹھے ہیں، ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں. ٹرمپ صاحب نے پہلے اس سے فون اٹھایا اور کہا یار مودی ادھر آ جاؤ، چلتے ہیں کیمپ ڈیوڈ میں، عمران کو بلا لیتا ہوں، بات کرتے ہیں. تو فرض کر لیں اگر وہ ملاقات ہوتی ہے تو مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب کہیں زیادہ یکجا ہوں گے ایک دوسرے سے بنسبت عمران صاحب.
ان کی ہسٹری ہے تعلقات کی، جبکہ عمران خان سے تو ان کی پہلی ملاقات ہے.
امریکہ کی لیننگ ہے ہسٹوریکل سے، یہ ہوتا تھا نا کہ ایک تشویش بھارت کو یہ تھی کہ اگر امریکہ انٹروین کرے گا تو پاکستان کے حق میں کرے گا. وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ویکر پلیئر ہے، اس کے امریکہ سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، انڈیا کے بہت زیادہ ہیں یار. تو ان اے وے فار انڈیا دس از اے گڈ میڈیٹر.
تو میں اب پرویز بخاری صاحب، معروف صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، کشمیری ہیں، سری نگر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ایک کشمیری کے حیثیت سے اور ایک ایسے کشمیری کے حیثیت سے جو کہ جانتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، عوام، انٹرنیشنل بھی حالات آپ جانتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں امریکہ سے بہتر کوئی اور میڈیٹر ہو سکتا تھا، ہے یا ہو سکتا تھا؟ ابھی تو یہ سب خیالی بات ہے.
میڈیٹ کوئی بھی کرے، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ پچھلے 70 سال سے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ڈائیلاگس ہوئے بھی ہیں اور اب ڈائیلاگ بند ہے، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. بلکہ کشمیر کے اندر لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں. اور اگر میڈیشن کا کہیں سے پاسبلٹی بن جاتی ہے، میرے خیال سے یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے، یہ کسی کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خالی کہنا کہ وہ تیار ہے میڈیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے ایک بڑا کیتھارسک مومنٹ بن گیا، ایک بڑی بات بن گئی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک یاد دہانی ہو گئی کہ 70 سال سے پڑا ہوا اتنا مسئلہ ہے، اتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد ہیں، ان کے لیے اگر کچھ ہو جاتا ہے یہ یاد دہانی ہو گئی. ابھی حالات یہ ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نئی دلی اور سری نگر کے بیچ میں کئی سالوں سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھی تبدیلی کشمیر کے حالات میں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو سلجھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف ملٹرائزیشن بڑھ رہی ہے، جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور اگر اس ماحول میں اگر کہیں سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی میڈیشن کا ماحول کھڑا ہو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھ کے کشمیر میں بیٹھ کے سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے خیر مقدم کریں گے اس بات کا.
تو میں اب دوبارہ جاؤں گی وجے شاستری صاحب کے پاس. کہ شاستری جی آپ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ایک واجپائی صاحب کی بات ہوئی تو ایک جو سنجیدہ کوشش ہوئی تھی اور جس میں کچھ امید لوگوں کو نظر آئی تھی دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے کی اور کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہونے کی وہ واجپائی صاحب کے ساتھ تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نریندر مودی جی کی جو حکومت ہے وہ قطعی طور پہ تیار نہیں ہوگی اس بات کو امریکہ کی ثالثی کو قبول کرنے کی, اس بحث کو چھوڑ کر کہ انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی, لیکن اب یہ پیشکش تو ہے نا ایک طرح سے یہ کہ امریکہ تیار ہے.
دیکھیے میڈم, میں کئی لوگوں کی باتوں کو سن رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر کوئی تین دو تین پوائنٹ پر جس کو بولنا بہت آوشک ہے, اس کے بعد میں اس پر بولوں گا. پہلا تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ مانا کہ جو بھارت کے پارلیمنٹ میں ہمارے ودیش منتری نے جو باتیں کہیں اور اسے مودی جی کے اسٹیٹمنٹ کو الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے, تو یہ ہاسیاسپد بات ہے. کیونکہ مودی جی جس ہاؤس کے پرائم منسٹر ہیں, ان کا منسٹر ان سے بغیر کنسلٹ کر کے بول رہا ہوگا یا ان کی بات نہیں بول رہا ہوگا, یہ اس پر تو شنکا کرنا کر رہے ہیں وہ بالکل میرے خیال سے نہیں ہے. جو بھی سچائی ہے اس کو بولا گیا ہے پارلیمنٹ, تو وہ یہ کہنا کہ مودی جی سے ہوگا یہ بالکل, مودی جی ان ویکتوں میں سے وہ ویکتو ہے جو جھوٹ کا سہارا بلکہ سچائی کے راستے پر چلتا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھ کر کے دیسی ڈھنگ سے وہ بات کرتا ہے. تو ان کو اپنی بات سے ہٹنا یا سرکار کو سامنے کر کے کوئی دوسری باتیں کہلانا, ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہلکی سوچ ہے جو لوگ ایسی بات سوچ رہے ہیں. دوسرا میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیشن کا جو آئیڈیا کے بارے میں کہ یہ کیسا آئیڈیا ہوگا کیا ہو, میڈیشن کی تو آوشیکتا ہی نہیں ہے. اس میں تو دونوں پکش آپس میں ہی بات کر کے مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. یہاں سوال یہ, اور ہم نے کبھی بھی بات کرنے سے اپنے کو روکا بھی نہیں ہے, بس ہمارا ایک شرط یہ تھا کہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ بلٹ اینڈ ٹاک دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. تو جہاں آپ کی تھرڈ پارٹی کے میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے وہاں فورفلی اس پرکار سے مان نہ مان میں تیرا مہمان کی بات نہیں لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ.
لیکن شاستری جی اس میں نقصان کیا ہے, میں یہ پوچھوں گی نقصان کیا ہے تھرڈ پارٹی کی میڈیشن میں؟
نقصان جب آوشیکتا ہی نہیں ہے تو اس سے نقصان اور فائدے کی بات ہی نہیں ہے. ہم پاکستان اگر شانت ہو جائے ٹیررزم بند کر دے ہم بات کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کا ہم لوگ سالو کر لیں, کیونکہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں. اس میں مودی جی ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ شہید جو ہے آتنکوادی شہید وہ پاکستان, وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ میڈیشن کی کیا بات کریں گے. ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ میں اپنے وچار کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے, اور ابھی جو بولے ہیں کہ کشمیر میں وہاں زندگیاں خراب, لاکھوں زندگیاں خراب ہو رہی ہیں, یہ لوگ جو لوگ ایسا بول رہے ہیں میرے خیال سے ورتمان کشمیر کے بارے میں ان کی جانکاری بالکل نہیں ہے. وہاں جس طرح سے نارملسی آ رہی ہے, ٹیررسٹ سمٹ چکے ہیں اور لگ بھگ وہاں پر 800 سے زیادہ آتنکوادیوں کو مار گرایا گیا ہے اور وہاں پر نارمل اسٹیٹ ہو رہی ہے, اسکول کالج بن رہے ہیں, وہاں کے لڑکے آئی ایس آئی پی ایس میں جا رہے ہیں, وہاں روزگار کی پوری ویوستھا کر دی گئی ہے اور وہاں کے لوگ خوش ہیں. اب اس بات کو شاید لوگ نہیں جانتے, وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں مشکل میں ہیں, وہاں کچھ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں مشکل میں ہیں جو لوگ ٹیررزم کو اسپانسر کرتے ہیں یا ٹیررزم کو مانتے ہیں, اور جو وہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں جو پاکستان کا انسٹرومنٹ ثابت ہوتے ہیں, وہ ان کی زندگیاں ضرور خطرے میں ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی ہی جب تک کہ اس سمسیا کا سمادھان نہیں ہوتا.
شاستری جی میں یہاں پہ بلکہ پاکستان سے جو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ارشاد محمود, میں ان سے پوچھوں گی کہ بہت دفعہ بارہا اپنی نئی حکومت کے آنے کے بعد عمران خان نے یہ ذکر کیا اور اس کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ بات کی, اور ابھی بھی ان کی جو کچھ انٹرویوز تھے انہوں نے اس پہ بھی کہ جب فوجیں بہت زیادہ کسی علاقے میں لے آئی جاتی ہیں تو کس نوعیت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان پر بھی بات کی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کس حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نئی حکومت میں یہ عزم موجود ہے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کے بارے میں اور یہ کہ ایمانداری سے مذاکرہ شروع کرنے کے بارے میں؟
دیکھیے, ایک تو ایمانداری پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کی, آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں, اور اب امریکہ بھی بار بار اس کی گواہی دے رہے ہیں. ابھی ہم جب بھی دیکھتے تھے ماضی میں, جب بھی کوئی پریزیڈنٹ یا سینئر بندہ جاتا تھا, افیشل جاتا تھا, اسے یہی کہا جاتا تھا کہ ڈوم اور. لیکن اب جو پوری فضا جو ہے وہ بدلی ہے, وہ بدلی اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے گراؤنڈ پہ بہت کوآپریٹ کیا اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹ نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا, پاکستان کے جو کنسرنس تھے ان کو ایڈریس کیا. اور جب اس کے کنسرن ایڈریس ہو گئے تو پاکستان کا جو جواب تھا وہ بہت زیادہ ریسیپروکل جو تھا, وہ ریسیپروسٹی بہت بڑھ گئی. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان کے بہت سارے ایشوز تھے جن میں وہ ان کا ایک کہنا تھا کہ جی آپ حافظ سعید صاحب کو بند کریں, انہیں بند کر دیا گیا, اور بہت ساری دوسری باتیں تھیں. ان پہ بھی گریجولی کافی زیادہ عمل کیا, لیکن کوئی انسینٹیو انڈیا کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ یا عمران خان جو ہے وہ اس کے اور فردر اس کو آگے بلڈ کریں. اس کے لیے ضروری تھا کہ کشمیر کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کی فضا بنتی, کوئی بات بنتی, اس سے کشمیریوں کو ایک میسج جاتا. کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کم ہوتی ہے. ابھی بی جے پی کے جو آپ کے ریپرزینٹیٹو ہیں وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جنگ و جدل کی. وہ تو اب 10 لاکھ آپ کی 5-7 لاکھ فوج ہے, آپ نے 80-90 ہزار لوگ وہاں پہلے ہی مارے جا چکے ہیں, 80-90 ہزار اور مار دیجئے, لیکن اس سے کوئی سولوشن نہیں نکل رہا. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں ہم نے نارملیسی لائی ہے. اب نارملیسی کا بھی یہ عالم ہے کہ پلوامہ جیسا ایک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہونے والی تھی. یہ کہتے ہیں جی ہم نے آ کے پاکستان کے اندر بمباری کر دی, پھر لیکن یہ مینشن نہیں کرتے کہ پاکستان نے واپس جا کے بمباری کر دی. ان کا ایک طیارہ گر گیا, ان کا ایک پائلٹ گر گیا, تو ہم بینک آف وار جنگ کے دھانے پہ پاند گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو عزم ہے, اس عزم کو انڈیا کی طرف سے اسی طرح کے عزم کا اظہار ہونا چاہیے. واجپائی جی نے بہت اچھی بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت انسانیت کے ناطے میں ہم کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کریں گے. یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں دونوں ملکوں نے کافی پیش رفت بھی کی تھی.
تو میں اب ہمارے پاس آخری
پہلی حکومت نے سپورٹ کیا تھا, انیشیٹ کیا تھا.
ہاں بالکل,
وہ چیزیں, وہ فریم ورک ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کے اوپر آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں.
دو منٹ آپ سب کے لیے.
طاقت سے دبا دیں گے, پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے اور یہ مسئلہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو میں 70 سال کا جو کشمیر کا تنازع, اس کو میں بڑا کلوزلی میں نے دیکھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کشمیر میں.
میرا خیال ہے ابھی جو بھی بات ہے, شاید محمود صاحب سب نے اس سے اتفاق کیا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے, تو میں کیونکہ صرف ہمارے پاس 8 منٹ باقی ہیں, میں چاہوں گی سب لوگ تھوڑا تھوڑا کچھ ضرور کہیں. میں بہت دیر سے خاموش ہے ہمارے سنجے کاک. سنجے صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم آخر میں صرف کنکلوڈ کر رہے ہیں, تو آخری کمنٹس تو میں دینا چاہوں گی انصاری صاحب کے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا نظر آتا ہے آپ کو اس وقت بہترین سولوشن کشمیر کے مسئلے کا؟
نہیں, ابھی میں جو شاستری جی کے کمنٹس سن رہا تھا تو سن کے بس دکھ ہی ہو رہا تھا کہ ایک طرف سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ہمارا جو ہندوستان کا الیکشن ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, وہ ابھی بھی ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پوزیشن جو شاستری جی جس کو ایکسپریس کر رہے تھے وہ ایک موقع پرستی ہے, ایک اپرچونزم ہے ڈومیسٹکلی, کہ جس طرح سے آپ اپنے ہندوستان میں عوام کے سامنے پیش آئے ہیں, اب اس سے آپ کو اس پوزیشن سے آپ کو ہٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور دقت تو یہ ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل نہیں ہے, تو وہ ایک ہی آواز میں وہی بولتا ہے جو کہ سرکار بولتی ہے. لیکن دنیا بھر میں تو لوگ اس طرح کے نہیں ہیں نا. تو یہ جو انڈیا کی پوزیشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کا جو ایک مورل کور تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اب پریشر میں آ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کشمیر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نارمل سی آ گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے تو اس سے ایک کیا بولتے ہیں, ایک غلط فہمی, اس سے بڑی کیا غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کشمیر کے عوام, کشمیر میں رہنے والے لوگ, کشمیر کے صحافی, کشمیر کے رائٹر, فلم میکر سب کہہ رہے ہیں कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल फंसी हुई है, जमी हुई है, गला घुट रहा उनका, और आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सी है। तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत इसी में है। ट्रंप ने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे लगता है वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इंडिया में और इंडियन गवर्नमेंट क्या पहचानने को तैयार है कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है, यहाँ का हिस्ट्री क्या है, यहाँ का और यहाँ के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।
आदिल नजम, डॉक्टर आदिल नजम
जी, जी जी देखिए मेरे मेरा ख्याल ये है कि जो दोनों मुल्कों की एक पोजीशन है ना हिस्टोरिकल, उसको बार-बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। वही रटी रटी बातें हैं जो हम भी पाकिस्तान वाले भी कर लेते हैं, इंडिया वाले भी कर लेते हैं, ठीक है, वो सियासत है। इस वक्त जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो एक फ्रेश आइडिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फेंक दिया। पाकिस्तान कहता है जी इसका हल सिर्फ यूनाइटेड नेशन के पास, इंडिया कहता नहीं जी इसका हल सिर्फ हम दोनों आपस में बैठ के करें, इंडिया कहता है सब भला चंगा दूध की नहरें, पाकिस्तान कहता है कि जनाब वहां कत्लो आ रहे। तो ये एक मसला फंसा हुआ है, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव प्रूव्ड टू बी इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में आते हैं, कहते हैं यार मैं ऑफर करता हूं अपनी सर्विसेज मीडिएट करने के लिए। तो दोनों को सोचना चाहिए कि शायद जो 70 साल से ना भारत कर सका ना पाकिस्तान कर सका,
चाहे वजूहत क्यों भी, कोई भी वजूहत क्यों ना हो, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि नहीं, आप कहिए, मैं सिर्फ अपनी ख्यालात का इजहार कर रही थी। मुझे आदिल
जी
आप जुमला पूरा किया
जी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ यही है कि तो मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है। उस आइडिया पे सोचे बजाय वही रटी हुई बातें जो हम रही हैं उनको हम बार बार कराते हैं, उससे कुछ दुनिया नहीं बदलेगी। शायद कोई नई जो इनोवेटिव आइडिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सबसे बेहतर काम करते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का करते हैं, अब उन्होंने कर दिया
और हैरान कर दिया पूरी दुनिया को ही तकरीबन, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा। अच्छा परवेज बुखारी, आपसे मैं ये पूछूंगी, ये जब भी बात हो रही थी कि बिल्कुल मुर्दा एक तरह से ये मसला जो है अखबारात के हवाले, मीडिया के हवाले से भी, तो क्या भारत के मेन स्ट्रीम जो मीडिया है इसमें जिक्र आता है कश्मीर का उस तरह से जैसे आना चाहिए, जिस तरह की?
देखिए अगर आप मुझे एक सहाफी के तौर पे पूछेंगे बिल्कुल नहीं आता है। हम लोग हमेशा हिंदुस्तान क्या कहता है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में, इसकी बात होती है। दो स्टेट्स की स्टेटस नैरेटिव मीडिया में आते हैं और हिंदुस्तान के मीडिया में हिंदुस्तान की सरकार जो बोलती है बस वही आता है। लेकिन मसला हम लोग हमारे सारे मेहमान भी सिर्फ ये बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया। यहाँ मसला कश्मीर के 1.25 करोड़ आवाम का है जिनके सर पर 7 लाख की फौज बैठी हुई है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उनका हाल क्या है। सबसे बड़ी बात है कि अगर चाहे मीडिएशन हो, चाहे यूएन के रेजोल्यूशन हो, या चाहे इंडिया पाकिस्तान से डायलॉग हो, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमसे पूछे कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको अपना अपना फ्यूचर संभालने का मौका दे दीजिए। It's a simple and plain issue of right to self-determination of the people living in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. अगर उनकी बात सुनने का कोई तरीका कोई भी निकाल सकता हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन निकाले, प्रेसिडेंट ट्रंप की मीडिएशन निकाले, हिंदुस्तान पाकिस्तान का डायलॉग निकाले, या नई दिल्ली और श्रीनगर और इस्लामाबाद के बीच का डायलॉग निकाले, वो प्रोसेस को वेलकम करना चाहिए। वही यहाँ की आवाम चाहती है जो मेरी समझ में,
क्योंकि उसमें कम से कम एक उम्मीद नजर आती है, अंजाम उसका जो भी हो लेकिन एक उम्मीद नजर आती है कि शायद बेहतरी की तरफ जाए। अंसारी साहब
जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो आवाम है दोनों ने मिल करके आजादी की लड़ाई लड़े और कॉलोनियल रूल को खत्म किया, और आज बदकिस्मती से हम लोगों में वो मिलाप नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हिंदुस्तान के तमाम सूबों से सबसे ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हैं, और बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो गवर्नमेंट ने तय किया और एक्सेप्ट किया उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। उसमें प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप की स्कीम है, उड़ान जैसी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, और किसी भी पे अमल नहीं हुआ जिसकी वजह से वहाँ का नौजवान जो है खफा है। एक बात और बताना चाहूंगा कि जब से हमने होश संभाला और इंडियन इलेक्शन को हमने देखा, पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ये पाया कि जब कभी हिंदुस्तान में कहीं भी चाहे सूबाई इलेक्शन हो चाहे नेशनल लेवल का इलेक्शन हो, पाकिस्तान का नाम कश्मीर का नाम आ जाता है, उसका मतलब यह है कि जब कभी पाकिस्तान से टेंशन होता है और कश्मीर में टर्मोइल होता है तो इसका हमारी पार्टीज को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को पोलराइजेशन में बहुत फायदा
होता है। बहुत शुक्रिया एमएम अंसारी साहब आपका, विजय सोनसकर शास्त्री साहब आपका, इसके अलावा परवेज बुखारी साहब, संजय काक साहब और डॉक्टर आदिल नजम साहिबान, आप सबका बहुत शुक्रिया। शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
इमरान खान ने एक रोज पहले कैपिटल एरिना वॉशिंगटन DC में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अशराफिया और मौरूसी सियासी निज़ाम चलता रहा है जिसने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जबकि मुल्क में राइज करप्शन की वजह से गैर मुल्की कंपनियां यहां सरमायाकारी से कतराती हैं। इस दौरान कैपिटल एरिना के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी किए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन, नुखबत मलिक और अजीज अहमद वहां मौजूद थे। उन्होंने जो रिपोर्टें इरसाल की उनको मुरतब किया है फायसा बुखारी ने, आइए सुनते हैं।
इमरान खान का बतौर वजीर आजम अमरीका का यह पहला दौरा है। अमरीका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वाशिंगटन के कैपिटल वन अरीना में अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इमरान खान के इस खिताब का इनकाद किया था। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम लेकर आ रहे हैं जहाँ लोगों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे लाया जाएगा, क्योंकि मौरूसी सियासत के निज़ाम ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया।
जमहूरियत भी जब आती थी मेरिट नहीं आई, नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया, मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। उनके भाई शहबाज शरीफ क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके भाई थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए, कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। उधर वली खान की फैमिली, वो भी फैमिली सिस्टम आ गया। उधर मौलाना फजल रहमान, उसके भाई भी और उसके बच्चे आ गए। कहने का मकसद ये है कि जब जमहूरियत भी आई मेरिट तो नहीं आई।
वजीर आजम ने बैरूनी सरमायाकारी पर बात करते हुए कहा कि हमारे पास बेशुमार मादनियात हैं जिनसे मुल्क में तवानाई की कमी का और गुर्बत का खात्मा हो सकता है, लेकिन करप्शन की वजह से गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करना चाहती। रेकोडिक में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना आयद किया गया।
पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं और हमारी बदकिस्मती देखे कि एक रेकोडिक के अंदर बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था, अब वो इंक्वायरी की है, पता चलेगा कि क्या वजूहात है। याद रखे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती क्योंकि वहां पैसे मांगते, करप्शन है, रिश्वत मांगते।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन पर तमाम केसेस पहले की हुकूमतों में बनाए गए थे, उनकी हुकूमत ने इदारों को आजाद किया है, इसलिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और वफाकी तहकीकाती इदारा FIA आजादी से काम कर रहे हैं, लेकिन सारी अपोजिशन भी उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाए तो किसी को NRO नहीं दिया जाएगा।
फजल रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। सब इकट्ठे हैं, इनका सब एक मकसद है, 3 लव सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO, यानी के जो अब तक इक्तदार में बैठ के मुकमुका है, हमने ताकतवर का आज इत्तेसाब कर दिया, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी है, अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए।
उन्होंने कहा कि वो हमेशा से कहते आए हैं कि अफगानिस्तान में मसले का हल जंग नहीं मुज़ाकरात हैं, और आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात में भी वो इसी पर बात करेंगे।
मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. ہر قسم کی مجھے برا بھلا کہا گیا, دہشت گرد کہا گیا, طالبان خان کہا گیا. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے.
وزیر اعظم عمران خان کے واشنگٹن کے جلسے کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا, جس میں شرکا نے نواز شریف, محسن داور, علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا. اس مظاہرے کا انتظام پاکستان پروگریسو الائنس اور پاکستان فورم فار ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی نے کیا تھا. وائٹ ہاؤس کے بعد نعرے بازی کرنے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد ان لوگوں نے ارینا کا رخ کیا. مخالفین میں کشیدگی بڑھی تو پولیس نے مظاہرین کو وہاں سے چلے جانے کو کہا.
میڈیا کو رہا کرو.
فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.